भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 24 अगस्त 2020 का दिन मंगल में हो, कल्याण में हो। मैं गीता अध्याय 10 का 15वां श्लोक आपको बताने जा रही हूँ। स्वामिवात्मनात्मान वेथम तुम पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं, और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने। दिव्या हाथम विभूतया या विभूति विलोकान इमास्तम व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक 16। इसलिए जिन विभूतियों से आपने संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आपसे आप में अविचल भक्ति हो जाए। श्लोक 17। कथम विद्याम योगम स त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन्मया। ही योगेन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? अर्जुन ने ये प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता, तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साध्य की दृष्टि में है, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। विस्परिणात मनोयोग विभूति जनार्दन भूया कथा तृतीय क्षण बंधो नास्ति नियमित। श्लोक 18। हे जनार्दन, आप अपने योग समर्थ को विभूतियों को विश्वास, क्योंकि आपके अमृत निर्वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। जैसे भूखे को अल्प प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त को अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। वे जो जो भगवान के वचन सुनते हैं, क्यों ही क्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा उन अमृत वचनों को सुनते हुए ना तो उन वचनों का अंत आता है, ना उनको सुनते हुए तृप्ति होती है। श्री भगवान उवाच, अंत ते कथिष्यामि दिव्य आत्मा विभूतया प्रधान श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तृष्यामि। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि हे कुलश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का मतलब नहीं है। भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियाँ भी अनंत है। स्वयं भगवान के संपूर्ण विभूतियों को ना तो कोई कह सकता है ना ही सुन सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान यहाँ अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं। गीता 10:40 में वर्णन मिलता है। हम आत्मा गुड़ा केशा सर्वभूता शेर या स्थित हम आदिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। श्लोक 20, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। वह संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और हमारा जो अंतःकरण है वो अपरा प्रकृति है। गीता 7 में इसका वर्णन आया, 7:4-5 में। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है, मतलब दोनों भगवान नहीं है। आदित्य नाम हम विष्णु, ज्योतिष नाम रवि अंशुमान, मल तस्मी नक्षत्र नाम हम शशि। श्लोक 21, मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में तीनों वाला सूर्य हूँ। मैं मर्तों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदा नाम सामवेदो अस्मी, देवा नाम अस्मी वासवा, इंद्रिया नाम मनश्चास्मी, भूता नाम अस्मी चेतन। श्लोक 22, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, प्राणियों में मन हूँ, मैं प्राणियों की चेतना हूँ। श्लोक 23, रुद्रा नाम शंकर चास्मी, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसु नाम पावक चास्मी, वेदो शिखर नाम हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कबीर मैं हूँ, वसु में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर मैं हूँ। श्लोक 24, मुख्यमान विद्धि पार्थ बृहस्पति, सेनानी नाम अहम स्कंदा, सामस्मी सागरा, हे पार्थ कवितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में मैं कार्तिके और जलाशयों में मैं सुंदर हूँ। 24 के बाद 25 लोग, महर्षि नाम रघुराम भीमोहम, गिरा मुस्ते कमक्षाम, यज्ञ नाम जप्योस्मी, स्थावरा नाम हिमालय, महर्षियों में भृगु और वाणी शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। 26 लोग, अश्वत्था सर्वभिक्षण देवेश्वर नाम चारदा, भगवा नाम चित्ररथा, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। 26 श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। श्लोक 27, उच्च शव समश्वानाम विद्धि मापमितो उद्भव, इरावतम गजेन्द्राणाम नरानाम चा नराधिपम, घोड़ों में अमृत के साथ सुंदर से प्रकट होने वाले उच्च शवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में इरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। श्लोक 28, आयु धाना महम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक, वजन चास्मि कंदर्पा, सर्पा नाम अस्मि वासुकी। आयु दो में वज्र, धेनु में काम धेनु मैं हूँ, संतान उत्पत्ति का हेतु काम देव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी नाग मैं हूँ। श्लोक 29, अनश्चास्मी नारा नाम दर्नो याद साम हम, पितृनाम है यमा चास्मी, यमा स्वयं ताम हम, नागो में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वर्ण मैं हूँ। पितरों में आर्यमा और शासन करने वालों में यमराज में हूँ। श्लोक 30 प्रहलाद चाशनी दत्या नाम काला कल यताम मेरा नाम चंद्रोहम दैनते पक्षी नाम दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतियों में मैं काल हूँ तथा पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं अब आपको रामदास सूर जी द्वारा विशेष भजन स्तवन का महत्व पढ़ के सुनाती हूँ। स्वर्गीय श्री रामदास सूर जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया है कि भजन करने का और स्तवन करने का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम भजन करते हैं, क्यों हम स्तवन स्तुतियां गाते हैं, इसका क्या फायदा है, इसका क्या मूल्य है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है। मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ। भजन स्तवन का महत्व। अनादि काल से ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त जन तथा भगवत प्रेमी गदगद चित से आनंद विभोर होकर भजन स्तवन करते रहे हैं। उन्होंने अपने साक्षात्कार की अनुभूतियों को सुंदर शब्दों में माला बनाकर स्तोत्रों के रूप में भजनों के रूप में समस्त मानवता के कल्याण के लिए संजोए रखा है। स्तोत्र क्या है, मानो शब्दों में इस देव की तस्वीर बना दी है। भक्त को जब साक्षात्कार होता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है, गदगद हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो लयबद्ध शब्द उसके मुखारविंद से स्वाभाविक रूप से निकलते हैं वही स्तोत्र बन जाते हैं। एक समय की बात है, आदि गुरु शंकराचार्य यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में बीमार हो गए, पेचिस से पीड़ित हो गए, अत्यंत शक्तिहीन हो गए। उनकी इच्छा दही खाने की हुई, दही खाने से पेचिस में लाभ पहुँचता है। बाहर दही वाली ने आवाज लगाई, दही ले लो, दही ले लो, आदि आदि। शंकराचार्य ने सुना तो बोले, दही वाली अंदर आकर दही दे जाओ। दही वाली ने उत्तर दिया, हम दही वालियां अंदर आकर दही नहीं बेचती, आपको आवश्यकता है तो बाहर आकर ले जाओ। शंकराचार्य बोले, बाहर आने की शक्ति नहीं है, तुम ही अंदर आ जाओ। दही वाली ने व्यंग से कहा, आचार्य शंकर तुम तो अद्वैतवादी हो, तुम तो केवल एक ब्रह्म को ही मानते हो, तुम तो किसी अन्य सत्ता का स्वीकार ही नहीं करते, आदि शक्ति को तो तुम मानते ही नहीं, आज तुम्हें शक्ति की क्या आवश्यकता पड़ गई, अपने ब्रह्म से कहो बाहर आकर दही ले ले। आदि गुरु शंकराचार्य का भ्रम टूटा, आदि शक्ति माँ गोविंद का साक्षात्कार हुआ जो दही लेकर उनके सामने खड़ी थी। आदि शक्ति ने उन्हें अपने कर कमलों से दही खिलाया, शंकराचार्य कृतकृत्य हो गए, उनकी वाणी मुखर हो उठी। आशु कवि तो वे थे, वह प्रसिद्ध स्तोत्र लिखा जिसे हम देवापराध क्षमा स्तोत्र कहते हैं। मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न च वाहन ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। शंकराचार्य ने कहा कि मैं कैसा पुत्र हूँ जो अपनी माँ को ही भूल गया, जननी को ही भूल गया। पुत्र तो कुपुत्र हो जाते हैं परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। शंकराचार्य ने माँ से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा ये स्तोत्र अस्तित्व में आया। विद्वानों का मत है कि स्तोत्र भी दिव्य स्तोत्रों की श्रेणी में आता है। आदि स्तोत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करने से आदि शक्ति माँ प्रसन्न हो जाती है। भजन स्तवन की महिमा अपरंपार है। भक्त कवि सूरदास के पदों पर आनंद कंद भगवान कृष्ण ऐसे थे जिससे हम उनके पद लिखने के लिए आ पहुँचते थे। सूरदास के पास एक लिपि का था, स्टैनो नहीं होता था, और सूरदास समझाने में पद लिखवाना शुरू कर देते थे, तो भगवान कृष्ण स्वयं स्टैनियो बनकर उनके पद लिखने बैठ जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सूरदास जी ने आधा पद लिखवाने के पश्चात पूछा, क्या लिखा? अंतर्यामी भगवान ने पूरा पढ़कर सुना दिया, जो अभी तक नहीं लिखवाया था वह भी पढ़कर सुना दिया। सूरदास असमंजस में पड़ गए कि जो पद अभी लिखवाया भी ही नहीं, वह सारे का सारा पद स्टैनियो कैसे जान लिया। उन्हें संदेह हो गया कि कहीं भगवान स्वयं तो स्टैनियो बनकर नहीं लिख रहे हैं। एक दो बार पहले भी उन्हें संदेह हुआ था, परंतु आज तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने भगवान की बांह पकड़ ली और कहने लगी, आ गए पकड़ में, अब नहीं छोड़ूंगा। संतो भगवान बांह छुड़ा कर चले गए, तो महाकवि सूरदास ने लिखा, बांह छुड़ाए जात हो निवल जाने के मोहि, हृदय में हृदय से जब जाओगे सब जानूंगा तो ही। कहते हैं कि जो पद स्टैनियो में लिखे हैं उनके अंतिम पद में सूरदास ही लिखा है, परंतु जो पद भगवान ने स्वयं लिखे हैं उनमें उन्होंने अपना नाम भी लिख दिया है, अर्थात श्याम भी जोड़ दिया है। यदि आप सूर सागर उठाकर देखें तो उसमें ऐसे बहुत से पद मिलेंगे जहाँ भगवान ने सूर के साथ श्याम भी जोड़ दिया है। जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे, एक दिन भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा की कि वह भगवान से शस्त्र उठवा के ही छोड़ेंगे। भीष्म कहते हैं, आज जो हरि न शस्त्र गहूं तो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहूं चंदन खंडी महारथी खंडी, प्रति ध्वज सहित तो धुलाऊं पांडव दल सम्मुख बैधाऊं, सहिता रुद्र बहाऊं सूर श्यामन भूमि विजय बिन जीत न पीठ दिखाऊं, आज जो हरि न शस्त्र गहूं। ऐसे अनेक भक्तों के स्तवन पर भगवान विजय हैं, कन्हैया के दोहों पर भगवान ऐसे विजय कि उनकी चादर बुनने स्वयं बैठ गया। कन्हैया ने देखा चादर तो आधी थी, पूरी कैसे हो गई? तो वह लिखते हैं, ओर से जपूं न कर से जपूं, मुख से जपूं न राम, राम सदा हमको भजे हम पावे विश्राम। मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे रही पे कहत कबीर कबीर, अकथ कहानी प्रेम की अब कुछ कही न जाए, गूंगे तेरी सरकरा खाए और मुस्काए। कबीर जी ने कहा, प्रेम की कहानी कही नहीं जा सकती, अकथनीय है, गूंगे के गुड़ की तरह जो चखता है वही जानता है, मुस्काता है परंतु शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेम का आनंद अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। हिंदी साहित्य में बेरस के एक महाकवि हुए हैं भूषण, उन्होंने शिवाजी महाराज की स्तुति लिखी तथा स्वयं उनको सुनाने पुणे चले गए। शिवाजी को खबर मिली कि महाकवि भूषण आए हैं तथा बेरस की एक अनुपम कविता भी लिख कर लाए हैं। शिवाजी कविता सुनने के लिए अधीर हो उठे। महासंग्राम में जो कवि अधीर नहीं होते थे वे विलक्षण वीर शिवाजी कवि भूषण की कविता सुनने के लिए अधीर हो उठे। भूषण पुणे के एक मंदिर में ठहरे थे। शिवाजी एक सिपाही का वेश बदल कर उनके पास पहुंच गयी, उनसे परिचय किया तथा कहा कि वह शिवाजी के दरबार में दरबान है तथा अगले कल उनसे मिला देंगे, परंतु एक बार वह कविता उन्हें सुना दी जाए। महाकवि भूषण ने समझाया कि ये साधारण सिपाही मेरी कविता को क्या समझेगा। उन्होंने अनमने से होकर वह कविता सुना दी। कविता सुनकर शिवाजी इतने हर्षित हुए, इतने भाव विभोर हुए कि उनके मन में बार बार ये कविता सुनने की इच्छा हुई। भूषण से फिर कविता सुनाने का आग्रह किया। कवि को कोई सुनने वाला मिल जाए तो कवि भी प्रसन्न हो जाता है। भूषण ने कविता एक बार फिर सुना ली। शिवाजी का दिल नहीं भरा, उन्होंने एक बार फिर से सुनाने का निवेदन किया। भूषण ने फिर कविता सुनाई। शिवाजी आनंद विभोर हो गए, उन्होंने फिर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की। कवि ने एक बार फिर सुनाई। यही क्रम चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। आधी रात बीत गई, शिवाजी हम शून्य हो गए, ये भी भूल गए कि वे सिपाही नहीं बादशाह है। शिवाजी इतने आनंदित हुए कि दशमेश शून्य भी हो गए। उन्हें ये विचार भी ना रहा कि रात कितनी बीत गई। शिवाजी आनंद मगन हो गए, ध्यान मगन हो गए, भाव समाधि में चले गए। शिवाजी बस यही तो है ध्यान, यही है समाधि अवस्था। जब आप हम शून्य हो जाएं, सने शून्य हो जाएं, यदि भजन करते हुए आप इतने मगन हो जाएं कि आपको समय का ज्ञान न रहे, अपने अहम का भी ज्ञान न रहे, तो आप समाधि अवस्था में ही पहुंच जाएंगे। कुछ अंतर नहीं पड़ता। शिवाजी स्तुति सुनते सुनते भाव मगन हो गए। आप स्तुति करते करते मगन हो सकते हैं। शिवाजी की अवस्था थी समय शून्य होकर, अहम शून्य होकर, प्रेम भी होकर सुनते जा रहे थे। 18 बार महाकवि अपनी कविता सुना चुके थे, परंतु शिवाजी कहे जा रहे थे एक बार और, एक बार और। भूषण ने 26 बार कविता पाठ किया। शिवाजी ने कहा एक बार और। महाकवि थक गए, क्रोधित हो उठे, कहने लगे बस अब नहीं सुनाऊंगा। तुम्हें बादशाह से मिलाना हो तो मिलाओ, नहीं तो देखा जाएगा। शिवाजी की आनंद भरी मस्ती टूटी। उन्हें ज्ञान हुआ कि रात बहुत बीत चुकी है। कहने लगे कभी पर क्षमा करना, आपको कष्ट हुआ। कल गेट पर मेरी ड्यूटी नहीं है, परंतु मेरा मित्र वहाँ होगा, मैं उसे कह दूंगा कि मैं आपको शिवाजी से मिला दे। अब मुझे आज्ञा दे। दूसरे दिन महाकवि राज महल में पहुँचे तो दरबार ने उन्हें आदर से दरबार में पहुँचा दिया। महाकवि तथा शिवाजी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। महाकवि पहचान गए कि शाम को सायंकाल को मंदिर में कविता सुनने वाला सिपाही शिवाजी ही थे। कहते हैं कि दरबार में महाकवि ने पूरे जोश से जब वीररस की कविता सुनाई तो योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगी। शिवाजी का हाथ जोर से बार बार तलवार पर जा रहा था तथा पूरे दरबार में सन्नाटे का आलम था। उस कविता के आरंभ के छंद इस प्रकार हैं। इंद्र जिनी जंब पर, बाड़ब सुअम्ब पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है, तेज तम अंश पर, कहन कहन जिनी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शुभ राज है। भजन सभी का भी यही महात्म्य है। भजन करने वाला भी शिवाजी की तरह अहम शून्य हो जाए, समय शून्य हो जाए, ध्यान मगन हो जाए तो उसकी भाव समाधि लग जाती है। अपने प्रभु के प्रेम में इतने मगन हो जाए कि सब कुछ भूल जाए, भगवान से प्रेम का नाता जोड़ ले, नेक नाता जोड़ ले, तभी भजन श्रवण कृतार्थ होता है। भक्त कवि दीन अपने इष्ट देव से कहते हैं, तुम बोलो ना बोलो, सुनो ना सुनो, हमें दावे हिया को करहने हैं। तुम और हमारी लखो न लखो, हम रूप प्योर दी थाने हैं। तुम आन मिलो न मिलो, हमें तो पग धोई ले भूल सराने हैं। रटी नाम तिहारे दीने मने, हम नेको नातो निभाने हैं। ये नेका नाता अपने भगवान से भजन स्तवन के द्वारा नित्य निभाते रहे। एक ना एक दिन भगवान कृपा अवश्य करेंगे, भगवत की अवश्य हो जाएगी। जिसकी रटन दिनात लग जाए उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। जीवन क्षण भंगुर है तथा पल पल बहुमूल्य है। किसी कवि ने कहा है, क्षण भंगुर है जीवन कलिका, कल प्रात जाने खिले न खिले। मल्याचल में रवि अस्त हुआ, फिर मंद समीर मिले न मिले। कनिकाल को ठार लिए फिरता, एक छोटी सी चोट झिले न झिले। हरी बज भज ले मेरी रसना, फिर अंत समय तू हिले न हिले। हमारी मनोकामना है कि सभी भगवत प्रेमी भजन स्तवन के महत्व को समझे और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो तथा श्री माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन को कृतार्थ करें। रामलाल सिंह इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी।